जो मेरा परिचय आप लोगों को दिया गया है, इससे अलग तरह का परिचय मैं हर भाषण से पहले दे दिया करता हूँ, और वो यह है कि अब मैं सदस्य नहीं रह गया हूँ, केवल मनुष्य हूँ। इसलिए अब मुझ पर कोई लेबल नहीं है। उम्र भर मैं समस्याओं का अध्ययन करता रहा हूँ, और उस अध्ययन में जितना तटस्थ रह सका उतना तटस्थ रहने का प्रयत्न करता रहा हूँ। तो मेरे कोई मत नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। जहाँ तक मेरा अध्ययन हुआ है, मैं लोगों की के चरणों में उसको समर्पित कर देता हूँ, और आगे विचार करना, निर्णय करना लोगों पर सौंप देता हूँ। आज की परिस्थिति में हमारे सामने तीन प्रमुख समस्याएं हैं। जो नई परिस्थिति है वो यह है कि संवैधानिक तानाशाही से हमने फिर से लोकशाही में और नागरिक स्वतंत्रता में प्रवेश किया है। अपने में ये बहुत बड़ा स्थित्यंतर है, ऐतिहासिक घटना है, और मैं तो यह कहता हूँ कि पार्लियामेंट्री पद्धति के इतिहास में यह एक अपूर्व घटना है। भारतवर्ष के साधारण मनुष्य का सत्व मार्च के चुनावों में प्रकट हुआ। अब हमारे सामने सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र स्थिर कैसे हो, लोकतंत्र फिर से प्रस्थापित तो हो गया, लेकिन लोकतंत्र बना रहे इसके लिए हम क्या करें, किसकी जिम्मेवारी है। सबसे पहला सवाल यह है कि लोकतंत्र का अधिष्ठाता कौन, आधार कौन, साहूकार है, सरकार है या नागरिक है। मैं नागरिक को इन सब से अलग गिना रहा हूं। नागरिक की सम्मति, लोक सम्मति, क्या लोकतंत्र का सैंक्शन है, आधार है कि फोर्स है, कंसेंट है कि फोर्स है। सिपाही की तलवार लोकतंत्र का आधार है या नागरिक का मत, वोट, इनमें से कौन सा लोकतंत्र का आधार है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, जिस लोक की हमको सम्मति चाहिए वो कहाँ है? आज हमारे देश में लोक खो गया है, नागरिक का कहीं पता नहीं है। एक दफा वॉल्टेयर पेरिस में प्रवेश कर रहा था, तो वो चुंगी वाले उसकी गाड़ी के भीतर झांक झांक कर देखने लगे कि कोई कॉन्ट्राबैंड चीज तो ये लेकर नहीं जा रहा है। तो वॉल्टेयर ने जवाब दिया, जेंटलमैन, देयर इज नथिंग कॉन्ट्राबैंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरी इस गाड़ी में कोई ऐसी कॉन्ट्राबैंड चीज नहीं है, लेकिन मैं हूं और मैं साधारण नागरिक हूं, जो किसी दल का नहीं हूं, किसी संप्रदाय का नहीं हूं, किसी संस्था का नहीं हूं। उस साधारण नागरिक की खोज है, और खोज इसलिए है कि केवल राज्य परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन से लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती। औपचारिक लोकतंत्र फॉर्मल डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है, लेकिन एक्चुअल लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती। फॉर्मल लोकतंत्र जिसे आप औपचारिक लोकतंत्र कहते हैं, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारी सत्ता पार्लियामेंट में होती है, लेकिन असल में सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट को बनाने वाला नागरिक सुप्रीम है। इस युग की बीमारी का वर्णन एक अंग्रेज महिला अर्थशास्त्री ने किया है, वी आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्टेट, राज्य संस्था का अति विस्तार, राज्य संस्था का अति महत्व, राज्य संस्था हमारे जीवन के सब क्षेत्रों में छा गई है, ये आज की बीमारी है। नागरिक की सत्ता निर्भरता, राज्य निर्भरता आज की बीमारी है। ये जब तक रहेगी तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। एक दफा का किस्सा है, एक आदमी घोड़े से गिर पड़ा। घोड़ा बहुत होशियार था, उसकी सीट से उसे पकड़ा उस आदमी को और अपनी पीठ पर बैठा लिया और शफा खाने में, दवा खाने में ले गया। दूसरे दिन अखबारों में समाचार निकला कि कैसा होशियार घोड़ा है, मानो सर्कस का हो, अपने मालिक को दवाखाने में पहुंचा आया। तो कुछ अखबार वाले बधाई देने गए कि घोड़े ने तो कमाल किया, ऐसा घोड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। कहा कमाल तो किया, लेकिन द डोंकी टुक मी टू ए वेटरिनेरियन, वो गधा मुझे मवेशियों के अस्पताल में ले गया। राज्य निर्भरता का यह परिणाम होगा। नागरिक सत्ताभिमुख रहेगा, राज्याभिमुख रहेगा, राज्य लोकाभिमुख नहीं होगा। राज्य नागरिक की तरफ मुखातिब हो लोकतंत्र, नागरिक राज्य की तरफ मुखातिब हो राज्यतंत्र। राज्यतंत्र की तरफ से लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाना है। वो लोक कहाँ है, कौन है, उसकी खोज है। और ये खोज हम और आप जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, इतना आपसे कह दूं कि द इंटेलेक्चुअल्स आर नॉट ऑलवेज द इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि हम में से ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो कहलाता है जो बुद्धि को बेचकर जीता है, जैसे मछुआ मछली पर जीता है। दूसरा बुद्धिवादी होता है जो बुद्धिवाद में दूसरे को परास्त करता है, दूसरे की बुद्धि को सुला देता है, मूर्छित करता है। और तीसरा बुद्धिनिष्ठ है जो दूसरे की बुद्धि को जागृत करता है। बुद्धि का लक्षण यह है कि दूसरे की बुद्धि को जागृत करे, उसमें संवेदना पैदा करे। तो ये जो हम इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, ये असल में इंटेलिजेंशिया नहीं होता है। कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो साधारण नागरिक की बुद्धि को विकसित करें, जागृत करें, उसकी आत्मा का आवाहन करें। वो साधारण नागरिक कौन है। आज तीन प्रतिष्ठा के साधन हैं समाज में, एक सत्ता है, दूसरी संपत्ति है और तीसरा शस्त्र है। इनके नीचे मनुष्य दब गया है, खो गया है मनुष्य। जब तक समाज में ये तीन प्रतिष्ठाएं हैं, मनुष्य की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो सकती। आप हजार कोशिश कीजिए, ये तीनों जिसके पास नहीं है वो है साधारण नागरिक, जिसके पास धन की सत्ता नहीं है, राज्य सत्ता नहीं है और शस्त्र सत्ता नहीं है। ये तीनों सत्ताएं जिसके पास नहीं है वो साधारण नागरिक है और उसकी खोज है। केवल मैं आपके विचार के लिए उदाहरण रख देता हूं। इस देश के तीन झंडों के ऐसे झंडे जिनके विषय में कोई अब विवाद नहीं रह गया है कि वो राष्ट्रीय हैं या अराष्ट्रीय हैं। एक झंडा है कांग्रेस का, सबसे पुराना। दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी का है और तीसरा समाजवादियों का है, इसमें लोहिया वगैरह सब आ गए। पहले झंडे पर प्रतीक है चरखे का। हर समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में पहले उसका उद्देश्य बतलाते हैं, उसके बाद उसका प्रतीक आता है, हम क्या करना चाहते हैं। चरखा प्रतीक है। साम्यवादी कम्युनिस्टों को कहा जाता है कि ये हिंसावादी हैं, सोशल चेंज की दाई धाय नर्स वायलेंस को, हिंसा को मानते हैं। लेकिन इनके भी झंडे पर कहीं रिवॉल्वर नहीं है, पिस्तौल नहीं है, हनुमान जी की गदा नहीं है, राणा प्रताप का बल्लम नहीं है, हंसिया और हथौड़ा है। और अब ये सोशलिस्ट सारे मिलकर कुछ जनता पार्टी बन गई है, तो इनका प्रतीक हलधर है। मतलब यह है कि ये सारे संकेत इस बात को बतलाते हैं कि क्रांति, समाज परिवर्तन शस्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, औजारों की प्रतिष्ठा के लिए होगा। क्रांति के द्वारा औजारों की प्रतिष्ठा बढ़ानी है, शस्त्रों की नहीं, सिपाही की नहीं, नागरिक की। नागरिक सत्ता का प्रतीक तलवार नहीं है, औजार है। औजार और हथियार में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हथियार का सदुपयोग जान लेना है और औजार का सदुपयोग जीवन देना है, मनुष्य का जीवन संपन्न करना है। मैं अगर तलवार से खीरा काटने लगूं तो आप कहेंगे कि ब्राह्मण का बेटा है, कभी बाप दादा ने देखी नहीं है तलवार, ये क्या जाने, तमीज नहीं है। और मैं पूछूं कि फिर तलवार का सदुपयोग क्या है, तो आप कहेंगे खीरा काटना नहीं, गला काटना है। हथियार का सदुपयोग मनुष्य को काटना है, जीवन का अपहरण करना है, औजार जीवन संपन्न करता है। ये हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है, गांधी बुद्ध क्रिस्त किसी का सवाल नहीं है, महावीर, इन सबको भूल जाइए। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसका साधन क्या हो सकता है। जो ये कहता है कि समाज परिवर्तन तलवार से हो सकता है, वो दकियानूस है। 50 साल पहले की बात करता है, 100 साल पहले की बात करता है, उसके विचार की प्रगति नहीं हुई है। औजार की प्रतिष्ठा अगर बढ़ानी है तो वो तिजोरी, तलवार और तख्त, इन तीनों से नहीं हो सकती है। दूसरा भी इसका कारण है, तख्त, तिजोरी और तलवार तीनों औजार के बिना बनाए नहीं जा सकते। एक तलवार दूसरी तलवार को नहीं बना सकती, एक तख्त दूसरे तख्त को नहीं बना सकता, एक तिजोरी दूसरी तिजोरी को नहीं बना सकती। यह सब औजार के बनाए हुए हैं। ब्रेथ हैज मेड देम एज ए ब्रेथ कैन मेक। औजार की एक सांस से यह बन गए हैं, फिर भी यह तीनों की सत्ता औजार पर चल रही है। औंधा कुछ इंतजाम हो गया है, दुनिया कुछ उल्टी हो गई है। ईश्वर की दुनिया ऐसी हो नहीं सकती है असल में, और मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं, इसलिए उस पर यह आरोप नहीं कर सकता कि ऐसी दुनिया वो बना सकता। वो बर्ट्रांड रसेल ने एक जगह लिखा है, इट सीम्स टू मी दैट डेविल मेड दिस वर्ल्ड व्हाइल गॉड वाज नॉट लुकिंग। चौमासे में वो सो गया होगा, मौका पाकर शैतान ने यह दुनिया बनाई डाली। अब ये जो शैतान की दुनिया है, इसको इंसान की दुनिया बनाना, और इसका एक मात्र उपाय यह है कि जिसके हाथ में औजार है, हंसिया, हथौड़ा है, चरखा, करघा है, हल बखर है, वो आदमी प्रतिष्ठित हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। ये पॉलिटिकल, राजनैतिक क्षेत्र में क्रांति का काम है। जो इसको करना चाहते हों उनको इसमें लग जाना चाहिए कि औजार अब तिजोरी के हाथ बिकेगा नहीं, तलवार से दबेगा नहीं, और सत्ता उसको हड़प नहीं सकेगी। इसे मैं लोक शिक्षण कहता हूं। जिसके हाथ में औजार है उसमें यह बोध, यह चेतना पैदा करनी है कि शक्ति का स्रोत तू है, यह सारे के सारे तेरे बनाए हुए हैं, तू नहीं होता तो यह कोई नहीं होते, सिपाही भी नहीं होता। दुनिया भर के औजारधारी अगर कल ये संकल्प कर लें कि हम आइंदा हथियार नहीं बनाएंगे तो निशस्त्रीकरण की कोई परिषद नहीं करनी पड़ेगी। एक नई तरह का मजदूरों का, श्रमिकों का संगठन है जो क्रांतिकारी होगा, लेकिन इस दिशा में हमको कदम बढ़ाना है। ये कदम आर्थिक क्षेत्र में किस तरह बढ़े, आज आर्थिक क्षेत्र में क्या है, इंसान भी बिकता है, भगवान भी बिकता है, इसलिए सारी चीजें, विद्या, कला, गुण, सारी चीजें बिकती हैं। प्राइस टैग, एक चिप्पी लगी हुई है कीमत की, हर चीज पर लगी हुई है। बगैर चिप्पी के कोई चीज ही नहीं है। एक्सचेंज वैल्यू, या तो चीज के बदले में चीज मिले या उसके बदले में पैसा मिले। प्रतिमूल्य का अर्थशास्त्र, ये आज का अर्थशास्त्र है। मार्क्स ने कहा था ये अर्थशास्त्र नहीं है, अनर्थ शास्त्र है। संपत्ति शास्त्र नहीं, विपत्ति शास्त्र, साइंस ऑफ ह्यूमन मिजरी। हमारे नागपुर में अर्थमंत्री थे गोखले, मैं एक कॉलेज का अध्यक्ष था, मैंने कहा कि आप अनुदान दीजिए हमारे कॉलेज को। क्या पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं कहा तब तो आप अर्थमंत्री क्या हुए, अनर्थ मंत्री हुए हमारे लिए। तो कहने लगे दादा मैं अनर्थ मंत्री होता तब भी अपने आप को धन्य मानता, क्योंकि किसी का नुकसान तो कर सकता कम से कम, लेकिन मैं अर्थमंत्री भी नहीं हूँ, अनर्थ मंत्री भी नहीं हूँ, व्यर्थ मंत्री हूँ, क्योंकि मैं किसी का भला भी नहीं कर सकता हूँ, बुरा भी नहीं कर सकता। ऐसा आज का अर्थशास्त्र है, प्रतिमूल्य का अर्थशास्त्र। हर चीज जिसमें बिकती है, एक साहूकार पर बहुत बाका प्रसंग आया, संकट में आ गया, एक एक चीज घर की बेची। घर में एक सोने की गणेश जी की मूर्ति थी, लाचार होकर मजबूर होकर वो मूर्ति भी सराफे में ले गया बेचने के लिए। सराफ से पूछा लोगे, उसने कहा हाँ लूंगा। क्या दाम दोगे, कहा 25 रुपया तोला। तो कहा ठीक है 25 रुपया तोला, उस जमाने का था। तो ये 25 रुपया तोला तो चूहे का दाम हुआ, गणेश जी का क्या देगा तू। ने कहा कि गणेश जी और चूहा बराबर बाजार में जब आ जाते हैं। कहा ये देवता है और ये क्षुद्र जंतु है, दोनों तेरे लिए बराबर हैं, कोई शऊर है कोई तमीज है। उसने कहा कि शऊर होता तो गणेश जी पूजा घर छोड़कर बाजार में नहीं आते और चूहा बिल छोड़कर बाजार में नहीं आता। ये दोनों जिस दिन बाजार में आ गए उस दिन ये कमोडिटी हो गए, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू कमोडिटी। अब न गणेश जी देवता है न चूहा क्षुद्र जंतु है, यह बाजार की संस्कृति है जिसको पूंजीवाद की संस्कृति कहते हैं। इसमें इंसान भी बिकता है, भगवान भी बिकता है, सारे भगवान जयपुर के बाजार में बैठे हुए हैं, जिनका भाव भी होता है। वो 5,000 कहता है, मैं 2,500 कहता हूं। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेंगे, कीमत से मूल्य की तरफ जाएंगे, प्राइस से वैल्यू की तरफ। प्राइस अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। किसी ने नास्तिक की व्याख्या की है, जो ईश्वर को नहीं मानता या बाइबल और वेद को नहीं मानता वो नास्तिक नहीं है। फिर नास्तिक कौन है, तो वो है हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। किसी चीज का मूल्य नहीं जानते। ग्वाले का दूध जिसमें आधे से ज्यादा पानी होता है, 3 रुपए शेर उसका भाव है, इसलिए वो संपत्ति है। और मां के दूध का कोई भाव नहीं, इसलिए वो संपत्ति नहीं। ये आज का अर्थशास्त्र है जिसमें वैल्यू का विचार नहीं है, प्राइस का विचार है। इस प्राइस के अर्थशास्त्र की तरफ से हम वैल्यू के अर्थशास्त्र की तरफ जाना चाहते हैं और सारी दुनिया जाना चाहती है। इसलिए पहले संकल्प किया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहला संकल्प का उच्चारण सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया, किसी धर्म ने नहीं, किसी धर्म संस्थापक ने नहीं। कार्ल मार्क्स ने 3 संकल्प प्रकट किए। पहला संकल्प, एक दिन आएगा जब दुनिया में कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा। आप सारे धर्म ग्रंथ खोज डालिए, किसी धर्म ग्रंथ ने यह कहा ही नहीं। गरीबों को दान दो, उनका कष्ट निवारण करो, दूसरा संकल्प उसने घोषित किया, एक दिन आएगा जब राज्य की सीमाएं नहीं होंगी, स्टेट बाउंड्रीज नहीं होंगी, यह भी कहीं नहीं है। और तीसरा संकल्प किया कि एक दिन आएगा जब युद्ध नहीं होंगे और हथियार भी नहीं होंगे। ये तीन संकल्प कार्ल मार्क्स ने किए, और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में कोई क्रांतिकारी किसी भी देश का हो, इनसे भिन्न संकल्प कर नहीं सकता है। ये मार्क्स छाप क्रांति है और ये गांधी छाप क्रांति है, ये जो कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो खुद तो बहके हुए हैं, लोगों को भी भुलावे में बहकावे में डालते हैं। ये तीन प्रतिज्ञाएं हैं, तीन संकल्प हैं क्रांति के, एक गरीब और एक अमीर ये नहीं रहेंगे, नहीं रहने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? श्रम की प्रतिष्ठा, श्रम का मूल्य स्थापित करेंगे। व्यापार में, कारखानों में, सब जगह श्रम का मूल्य प्रस्थापित होगा। आज श्रम बाजार में बिकता है तो लोकतंत्र भी बाजार में बिकता है। वो बर्क ने कहा था, लीडर्स आर बिडर्स एट एन ऑक्शन ऑफ पॉपुलैरिटी। लोकप्रियता के का नीलाम होता है, और उसमें जो बोली बोलते हैं सबसे ज्यादा वो नेता कहलाते हैं। वो पिकविक था, उसका एक दोस्त था स्नॉटग्रास। ये पिकविक से हमेशा कुछ न कुछ सवाल किया करता था। एक दिन इसने सवाल किया कि क्या करें जब किसी बात के बारे में शक हो तो क्या करें। पिकविक का नुस्खा बड़ा आसान था, व्हेन इन डाउट फॉलो द मॉब, भीड़ के पीछे जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं था वो। स्नॉटग्रास ने पूछा, एंड इफ देयर बी टू मॉब्स, फॉलो द लार्जेस्ट। ये है डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भीड़ नहीं होती। भीड़ का क्या, उसकी व्याख्या क्या है? ए मॉब इज ए फेसलेस ब्लॉब ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी शक्ल सूरत नहीं, ऐसी लोकसंख्या की एक गिल्टी का नाम भीड़ है। भीड़ में कई सिर होते हैं लेकिन दिमाग एक भी नहीं होता है, कई सीने होते हैं लेकिन हृदय एक भी नहीं होता। लोकतंत्र में व्यक्ति है, व्यक्ति मुख्य। देयर इज नो कलेक्टिव वोटिंग, सामुदायिक मतदान हो ही नहीं सकता। हर आदमी की स्वतंत्र, उसका मूल्य है हर आदमी का अपने में। हर मनुष्य एक विभूति है, इसलिए लोकतंत्र में नीलाम नहीं होगा, किसी मनुष्य का नहीं और मनुष्य की मेहनत का भी नहीं। आज की आर्थिक व्यवस्था में एक मनुष्य अपने को बेचता है, दूसरा उसे खरीदता है। खरीदने वाला मालिक कहलाता है, बेचने वाला कभी मजदूर कहलाता है, कभी नौकर कहलाता है। इन रिश्तों को, इन संबंधों को बदल देने का नाम क्रांति। हम इन संबंधों को रखना नहीं चाहते। कोई मजदूर नहीं, कोई महाजन नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। एक मनुष्य दूसरे को खरीद नहीं सकेगा। कुछ क्षेत्रों में हमने इसको मान लिया है, जैसे दवा का क्षेत्र है, जो बीमार है उसको दवा मिलनी चाहिए, मिलती है या नहीं अलग सवाल है, कि यह हमने मान लिया कि जहां बीमारी है वहां दवा मिलनी चाहिए। लेकिन और दूसरी सारी चीजें जो खरीद सकता है उसी को मिलती है, या तो खरीद सकता है या छीन सकता है या हड़प सकता है, उसको चीजें मिलती हैं, उसको नहीं मिलती जिसको आवश्यकता है। क्रांति का अर्थ है चीज उसको मिले जिसकी आवश्यकता है, उसको नहीं मिलनी चाहिए हरगिज जो खरीद सकता है। मैं अगर कपड़े खरीद सकता हूं तो गर्मियों में भी ऐसे कपड़े पहनता हूं जो दूसरे को जाड़े में मयस्सर नहीं होते। इसका कारण यह है कि बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस परचेज है, क्रय विक्रय आधार है वितरण का। इस आधार को, इस बुनियाद को हम बदल लेना चाहते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में हम करना चाहते हैं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे क्रांतिकारी यह विचार कभी नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। जो हिसाब लगाता है वो क्रांति कभी कर नहीं सकता। गांधी ने अगर यही हिसाब लगाया होता कि मैं निशस्त्र बूढ़ा एक साम्राज्य को कैसे ललकार सकता हूं, कैसे चुनौती दे सकता हूं, तो गांधी सफल नहीं होता। पूरा सफल तो हुआ ही नहीं, लेकिन अल्प सफल भी नहीं होता। क्रांतिकारी असफलता से नहीं डरता, असफलता अलग चीज है, पराजय अलग चीज है। फेल्यूअर इज नॉट डिफीट, एवरी फेल्यूअर स्टिम्युलेट्स फ्रेश एफर्ट। हर असफलता में से प्रेरणा मिलती है, यह क्रांतिकारी का व्यक्तित्व होता है। वो कभी इसका विचार नहीं करता, और इसीलिए दुनिया में जिसे हम असंभव समझते थे ऐसी चीजें हुई हैं। कौन समझता था कि अमेरिका में क्रांति होगी, कौन जानता था कि फ्रांस में होगी, और कोई समझता था कि जार के राज्य में क्रांति होकर रूस में समाजवाद आ जाएगा, चीन जो सारी दुनिया का सिक मैन था, कौन जानता था कि वहां क्रांति होगी। वो तो हमारे भारतवर्ष का ही दिमाग है कि यहां हर चीज हम उधार लेते हैं दूसरे से। यहां का कम्युनिस्ट भी चीन में पानी बरसता है तो यहां छाता खोलता है। क्रांति में इस तरह से उधारी नहीं ली जाती, लेकिन क्रांति व्यावर्तक नहीं होती, संकीर्ण नहीं होती। दूसरे देश में जो हुआ है वो यहां नहीं होगा नहीं मानती, और यह भी नहीं मानती कि जो दूसरे देशों में नहीं हुआ है वो यहां नहीं हो सकता। दूसरे देशों में जो नहीं हुआ है वो यहां होगा, होकर रहेगा, और इसीलिए होगा कि दूसरे देशों में नहीं हुआ है। तीसरा क्षेत्र है सामाजिक और सांस्कृतिक। मैं बहुत थोड़े में रख रहा हूं, और इसको रखने के बाद मैं समाप्त कर दूंगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में मुख्य धर्म संस्था है, जिसे मैं डिनोमिनेशन कहता हूं, संप्रदाय। संगठित धर्म धर्म नहीं है, संप्रदाय है। जब धर्म संगठित हो जाता है वो धर्म नहीं रहता है। बहुत थोड़े में मैं रखूंगा कि जैसे मैं हिंदू हूं, मेरा मित्र एक मुसलमान है, वो भी झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोलता हूं, फिर भी हम दोनों हिंदू मुसलमान हैं। मैं सच बोलता हूं, वो भी सच बोलता है, मैं ईश्वर निष्ठ हूँ, वो भी ईश्वर निष्ठ है, फिर भी हम दोनों हिंदू मुसलमान हैं। मतलब ये हुआ कि ईश्वर नैतिकता, सदाचार और मानवता को घटा देने के बाद जो बचता है उसका नाम धर्म है। क्योंकि ये तो सारी कॉमन चीजें हैं, ईश्वर नैतिकता ये सारे धर्मों के लिए कॉमन है। और आप जानते हैं गणित का नियम है कि जो कॉमन हो जाता होता है कैंसल हो जाता है। तो ईश्वर खारिज हो जाता है, नैतिकता खारिज हो जाती है, और फिर जो बचता है वो धर्म रहता है। उसमें मैं और तू मुख्य रहते हैं और वो आपस में लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, इनमें बसे हुए ईश्वर भी धर्म के समाज बन गए हैं। उपासना अलग चीज है और धर्म का समाज बिल्कुल अलग चीज है। तो जब तक धर्म के समाज रहेंगे तब तक मनुष्यों में धर्म नहीं प्रकट होगा, संप्रदाय ही रहेंगे, डिनोमिनेशंस ही रहेंगे। तो इसका उपाय यह है, पहला उपाय है कि धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि आपके जो बेटे होंगे पोते होंगे वो हिंदू मुसलमान पैदा ना हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, मैं समझ सकता हूं, ईश्वर निष्ठ हो, शिव की पूजा करें, विष्णु की करें, मोहम्मद को माने, ईसा को माने या नानक को माने, लेकिन क्या वजह है कि इनके समाज बने? ये मैं सब आपके अध्ययन के लिए, सोचने के लिए रख रहा हूं। दूसरा है वर्ग। वर्ग मार्क्स के ने जो कहे थे वो आज हैं कि नहीं, ये सवाल बिल्कुल अलग है, इसको छोड़ दीजिए। वर्ग शब्द की परिभाषा बदलती गई है और आज मैंने आपको जितने में उसको सिंप्लीफाई कर सकता था, सरल भाषा में रख सकता था, उतनी सरल भाषा में रखा है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेचे बिना जी नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अपने आप को बेचने की नौबत नहीं है, जो दूसरों को खरीद सकते हैं। एक संपन्न है, दूसरा विपन्न है, ये दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों का निराकरण होना चाहिए। गांधी के नाम पर अक्सर कहा जाता है कि वो क्लास कोलैबोरेशन, वर्ग समन्वय चाहता था। अब उसको इतना मूर्ख कोई समझ ले तो बात अलग है। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, मालिक मालिक रहेगा, नौकर नौकर रहेगा, और मनुष्य एक बराबर होंगे, सबके काम एक समान माने जाएंगे। गांधी ने अगर यह कहा हो तो मानना पड़ेगा कि सब नॉर्मल इंटेलिजेंस थी, बुद्धि उसकी औसत से भी कम थी। इनका स्टेटस समाज में, इनका रुतबा, इनकी वक़्त समान तभी हो सकती है जब यह रिश्ता उनका बदले, चेंज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किस प्रकार होगा, चेंज ऑफ हार्ट क्या है वगैरह, ये बिल्कुल दूसरा विषय है, इसलिए मैं यहां उसका विवेचन नहीं करूंगा। लेकिन इतना अवश्य है कि क्रांति वो वर्ग करेगा जिसको उसकी आवश्यकता है। समाज में जो सुखी है उसको समाज परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? समाज में जो दुखी है, जो संकट में है, उसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए उसमें समाज परिवर्तन की क्षमता आनी चाहिए। वो सत्ताधारी, संपत्तिधारी और शस्त्रधारियों की कृपा पर, उनकी मेहरबानी पर नहीं जिएगा, नहीं जीना चाहिए। उसमें शक्ति आनी चाहिए प्रतिकार की। फिर उसको आप वर्ग संघर्ष नाम दीजिए, सत्याग्रह नाम दीजिए, नाम से बहुत काम नहीं है। हर नाम के कुछ सहचारी भाव होते हैं, वो बदल गए। पहले कम्युनिज्म में किसान आ नहीं सकता था, चीन में सारी क्रांति किसानों ने की। इसलिए किसी शब्द से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वर्ग निराकरण होना चाहिए, और जिस वर्ग को समाज परिवर्तन की आवश्यकता है उसके पराक्रम से होना चाहिए। उसमें क्षमता जागृत करें। मैं ये विधायक क्रांति के का कार्यक्रम आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा है जाति निराकरण। मैं जब चलता हूं ट्रेन में तो कभी कभी मेरे साथ एक आध मुसलमान होता है मित्र, उससे कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। बस अब फिर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मुझसे पूछता है आपका नाम क्या है? दादा धर्माधिकारी। तो संतोष ही नहीं होता जब तक उसको यह पता ना चले कि मेरी जात क्या है, तब तक वो सवाल पूछता चला जाता है, उसको संतोष नहीं होता। और फिर भी मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। अगर हिंदू हूं तो हिंदू नाम कह देने से संतोष होना चाहिए। हिंदू समाज में वास्तविकता जाति है, और जाति के तीन लक्षण हैं। मैं एक एक वाक्य में ही बोल रहा हूं। पहला लक्षण यह है कि जाति का कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे आदमी मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, इस तरह से कोई ब्राह्मण, भंगी, तेली, माली बन नहीं सकता। ये जाति का पहला लक्षण है। उसमें एंट्रेंस का एक ही दरवाजा है, वो है मां की कोख। दूसरा लक्षण यह है कि इसमें एग्जिट के दरवाजे बहुत हैं। इसलिए हिंदू समाज में से जितना निर्यात हुआ है उसी से इस देश में मुसलमान, ईसाई, सिख, ये सारे संप्रदाय संपन्नपे हैं। मुसलमान का संप्रदायवाद हिंदू की जाति संस्था का की संतान है, और जब तक जाति संस्था रहेगी तब तक इस देश में से मुसलमान, ईसाई, किसी का संप्रदायवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। आप हिंदू को चाहे जितना सैनिक शिक्षण दीजिए, क्योंकि वो दर्द कहीं है और सहजता कहीं है, ये हो रहा है। तीसरा जाति का लक्षण यह है कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों से जितना दूर रहेगा उतना वो पवित्र माना जाता है। दादा धर्माधिकारी पवित्र क्यों है? दूसरी जाति में शादी नहीं करता, एक पवित्र। और जरा ऊपर क्यों गया? दूसरे के साथ भोजन नहीं करता। और ज्यादा पवित्र? अपने घर में ही खाता है, बाहर नहीं खाता। और पवित्र? घर में माँ और पत्नी के ही हाथ का खाता है। और इससे पवित्र? अपने ही हाथ से भोजन करके खाता है, स्वयं पाकी। अब एक ही सीढ़ी रह गई, अपने हाथ का भी भोजन कर बंद कर दे तो स्वर्ग रखा हुआ। मनुष्य से जो जितना परहेज करता है वो उतना अधिक पवित्र।
To preach values which have no relevance to man's life. Every week we pick so many interview personalities in the television. How many weeks you have interviews with genuine students, with genuine teachers, with genuine clerks, with genuine unemployed people? How much we try to understand through the media the problems of the suffering people? In our media, the suffering people are just.